नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अरबपति गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है। अब वो विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग की लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी अब दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सोमवार को गौतम अडानी को 8.21 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे वो 11वें स्थान पर आ गए। मैक्सिकन अरबपति कार्लोस स्लिम ने शीर्ष 10 की सूची में गौतम अडानी का स्थान लिया है। बिजनेस मैग्नेट के नाम से मशहूर कार्लोस स्लिम की संपत्ति 85.7 बिलियन डॉलर है, जो गौतम अडानी की कुल संपत्ति से 1.3 बिलियन डॉलर अधिक है। अमेरिका स्थित फॉरेंसिक रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने पिछले बुधवार को अडानी समूह पर स्टॉक हेर फेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसके बाद से अडानी के शेयरों में गिरावट शुरू हुई। अडानी समूह की 7 सूची कंपनियों में से 4 में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई, जिसमें अडानी टोटल गैस, अडानी पावर और अडानी विल्मर और अडानी ग्रीन एनर्जी के लोअर सर्किट लगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था अगर रफ्तार नहीं पकड़ पाती है तो अगले वित्त वर्ष में भारत की निर्यात वृद्धि सपाट रहने की संभावना है। आर्थिक समीक्षा में मंगलवार को यह कहा गया। समीक्षा में कहा गया कि वैसे तो भारत का व्यापारिक निर्यात 2021-22 में 422 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं और वैश्विक व्यापार में सुस्ती का असर भारत की निर्यात वृद्धि पर पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक मांग में नरमी के कारण दिसंबर 2022 में भारत का निर्यात 12.2% घटकर 34.48 अरब डॉलर रह गया और इसी अवधि के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 23.76 अरब डॉलर हो गया। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के 2030 तक 1 करोड़ इकाई सालाना तक बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही ईवी उद्योग में 5 करोड़ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। संसद में मंगलवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 में ये जानकारी दी गई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बिक्री के मामले में भारत पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। इसमें कहा गया है, मोटर वाहन उद्योग हरित ऊर्जा की दिशा में बदलाव में अहम भूमिका निभाएगा। घरेलू ईवी उद्योग के 2030 तक 49% सालाना की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 2030 तक वार्षिक बिक्री के 1 करोड़ इकाई तक पहुंचने का अनुमान है। उद्योग का अनुमान है कि पिछले वर्ष के दौरान देश में कुल ईवी बिक्री लगभग 10 लाख इकाई रही। आर्थिक समीक्षा में ये भी कहा गया है, ईवी उद्योग 2030 तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा। सरकार ने इस क्षेत्र को समर्थन के लिए कई कदम उठाए हैं। मुंबई शहर में बेहतर मांग के चलते संपत्तियों का पंजीकरण जनवरी 2023 में सालाना आधार पर 7% बढ़कर 8,694 इकाई हो गया। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई शहर क्षेत्र में जनवरी के दौरान 8,694 इकाइयां संपत्तियों का पंजीकरण हुआ। इससे राज्य को 658 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला। सलाहकार कंपनी ने कहा कि इस महीने पंजीकृत संपत्तियों में से 84% आवासीय और 16% गैर आवासीय संपत्तियां थीं। ये रिपोर्ट आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य सभी प्रकार की संपत्तियों के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में लेन देन से संबंधित है। हालांकि संपत्तियों का पंजीकरण दिसंबर की तुलना में इस महीने 7% घटा। पिछले महीने 9,367 इकाइयाँ पंजीकृत हुई थीं। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद घर खरीदने को लेकर उपभोक्ताओं के उत्साह से मुंबई में आवासीय संपत्तियों की बिक्री बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति के 6.8% पर रहने का अनुमान लगाया है। संसद में मंगलवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 6.8% की महंगाई दर का अनुमान इतना ज़्यादा नहीं है कि निजी उपभोग को रोक सके, ना ही इतना कम है कि निवेश में कमी आए। समीक्षा में कहा गया, हालांकि लंबे समय तक खींचने वाली महंगाई सख्ती के चक्र को लंबा कर सकती है, ऐसे में ऋण की लागत लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में पेश किया। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से 10 महीने तक भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर रहने के बाद पिछले साल नवंबर में घटकर इससे नीचे आई है। केंद्रीय बैंक ने पिछले साल मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया था। संसद में मंगलवार को पेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार मध्य वर्ग की बढ़ती मांग, खर्च योग्य अधिक आय और अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण देश के विमानन क्षेत्र में विशाल क्षमताएं हैं। समीक्षा में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी से संबंधित प्रतिबंध खत्म होने के बाद हवाई यात्रा में फिर तेजी आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में पेश किया। इसमें उड़ान योजना सहित उन कारकों के बारे में बताया गया जो नागर विमानन क्षेत्र की मदद कर रहे हैं। उड़ान योजना के तहत देश के दूर दराज के इलाकों में हवाई अड्डों के खुलने से क्षेत्रीय संपर्क काफी बढ़ा है। पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे पथ प्रवर्तक कदमों से भारत की आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में ये अनुमान जताया गया है। मंगलवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के मुताबिक पिछले 8 वर्षों में सड़कों, रेल मार्गों एवं जल मार्गों में अप्रत्याशित विस्तार देखने को मिला है। इस दौरान बंदरगाहों और हवाई अड्डों को भी उन्नत किया गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।